मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 25 नवंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के रूप में हम लोग कल के विषय को ही आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने आप लोगों को दो टॉपिक दिए थे, उन्हीं पर मैं कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी किया है और इस अध्यादेश का नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृति दे दी है और इस अध्यादेश को अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। जो मेरे पास न्यूज की खबर है वहां तक कि मैं आपको बातें बता रहा हूं, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि मंत्रिमंडल ने उसे पारित किया है तो अब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य से ही करीब करीब होते हैं। लव जिहाद के बारे में इससे पहले हम लोगों ने कुछ बातें की थी और सच पूछे तो ये अध्यादेश उसी से ही जुड़ा हुआ है और इसमें जो व्यवस्था की गई है, आप बस जो एग्जैक्ट पॉइंट है आप उसे भर सुन लें कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला लड़की धर्म परिवर्तन करना चाहती है तो इसमें ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन विधि विरुद्ध ही होगा, ऐसा नहीं है, है ना। एग्जैक्ट चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रक्रिया यह है कि धर्म परिवर्तन करना अगर है तो उससे 2 महीना पहले ही जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, उत्तर प्रदेश में उसे DM कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको इसकी सूचना देनी होगी कि मैं ऐसे ऐसे धर्म परिवर्तन करना चाह रहा हूं और इस सूचना में बकायदे धर्म परिवर्तन का कारण क्या है, धर्म परिवर्तन आप क्यों करना चाह रहे हैं इसके बारे में भी बताना होगा। और यदि आपने गलत जानकारी दी तो उसके लिए बकायदे फिर अपराध माना जाएगा और वो गैर जमानती अपराध होगा। अगर आपने वहां झूठ बोला या कह लीजिए कि प्रलोभन किसी लालच में आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो यह मान्य नहीं होगा। दोस्तों, इस तरह का अध्यादेश आया है, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि है, मेरी समझ से उसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए कि कुछ ही दिन पहले इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है उसने अपना एक फैसला सुनाया था। निर्णय उसने यह दिया था कि आस्था में परिवर्तन के बिना सिर्फ शादी के लिए धर्म बदलकर इस्लाम अपना लेना वैध नहीं है, क्योंकि वो मामला इस्लाम धर्म को अपनाने से था तो इसलिए यहां इस्लाम शब्द आया है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी आस्था में बदलाव नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपकी आस्था इस्लाम के प्रति हो गई या हिंदू धर्म के प्रति हो गई या क्रिश्चियनिटी के प्रति हो गई और इसलिए आप धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर केवल शादी के लिए धर्म बदलना, उन्होंने कहा कि यह वैध नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और खासकर फिल्म इंडस्ट्री में काफी बात इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी कि जैसे कि एक हिंदू धर्म के तहत ये विवाह अधिनियम के तहत ही है कि हिंदू एक ही विवाह कर सकता है, लेकिन मान लीजिए कि किसी को लगता है कि नहीं दूसरा विवाह भी करना है तो हिंदू धर्म के तहत तो अवैध हो जाएगा, तो अपना धर्म बदल करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं और इसके बाद पता लगा कि फिर इस्लाम धर्म के अंतर्गत तो ज्यादा विवाह कर सकते हैं तो इस तरह से वो वैधानिक हो जाता है। तो इस तरह की घटना इससे पहले भी काफी हुई है, लेकिन इलाहाबाद ने अपने इसी फैसले को अभी कुछ 1-2 दिन पहले उलट दिया। उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो इससे पहले फैसला दिया था उस पर हम अब रोक लगाते हैं, क्योंकि वो जो हमने फैसला दिया था उससे कोई बहुत अच्छे कानूनों का आधार तैयार नहीं हो रहा है। मतलब देखिए, जो फैसले दिए जाते हैं स्वाभाविक तौर पर चूंकि वो मान्य होते हैं उनको कहीं ना कहीं कानूनी रूप मिल जाता है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे फैसले इस तरह के होने चाहिए कि ताकि उस पर आगे चल करके और बेहतर कानून तैयार हो सके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शायद गलत फैसला है, तो उन्होंने रोक लगा दी है। अब देखते हैं कि अब इस अध्यादेश का क्या होता है, है ना। लोग कोर्ट जाएंगे, करेंगे, अगर किसी को खराब लगता है तो, अगर ये को किसी को गलत लगता है, अवैध लगता है, यहां क्या लीजिए किसी तरह के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो अब लोग उस तरीके से इस पर बहस करेंगे। लेकिन डेफिनेटली चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यादेश है तो इस पर बातें भी होंगी, इस पर आर्टिकल्स भी आएंगे और आज के दैनिक भास्कर में बकायदे वेद प्रताप वैदिक जी ने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये एक नया उभरता हुआ टॉपिक है और मुझे लगता है कि इस पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो ये है कि अभी OTT की बात आप सुन रहे हैं, है ना, ओवर द टॉप, जिसमें नेटफ्लिक्स और ये सब आते हैं और बकायदे टेलीविजन पर जाकर के कुछ प्रोग्राम देखते हैं। उसमें एक नेटफ्लिक्स पर एक प्रोग्राम आया था, सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ का लिखा हुआ नॉवेल, बहुत मोटा उपन्यास है ये, द सुटेबल बॉय। ये पूरी सीरीज हम लोगों ने देखी भी है। इसमें एक दृश्य है, दृश्य यह है कि माहेश्वर, एक मध्य प्रदेश में एक जगह है माहेश्वर, और माहेश्वर की पृष्ठभूमि में वहां जो मंदिर है, शिव मंदिर और दूसरे देवी देवताओं के मंदिर है, उस पृष्ठभूमि में एक दृश्य दिखाया गया है जिसे एक प्रकार से अश्लील माना गया है। तो उस दृश्य को लेकर के जो नेटफ्लिक्स के ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ बकायदे FIR दर्ज की गई है IPC के सेक्शन 295A के अंतर्गत, जिसके तहत यह है कि आप किसी की आस्था को, समुदाय की आस्था को, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाते हैं। यहां पर अब एक सवाल उठता है कि अगर इस तरह की बातें लगातार फैलती चली गई तो जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, वो रचनात्मकता कैसे बची रहेगी? क्योंकि आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी रचेंगे, तो उसमें पता लगा कि किसी न किसी समूह, समुदाय की आस्था को चोट पहुंच रही है। जैसे आप देखिए कि जब पद्मावत फिल्म आई थी उस समय भी इस तरह की बातें हुई और लगातार इसके बारे में आपको कुछ न कुछ पढ़ने सुनने को मिलता ही रहता होगा। यहां तक कि जो अलग अलग किस्म की घटनाएं होती, यहां तक कि कुछ समूह इसके बारे में विवाद खड़ा कर देते हैं। जैसे आर्मी पर एक फिल्म आई थी, उसमें भी ये कहा गया कि नहीं, आर्मी में ऐसा नहीं होता है, आर्मी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। इससे पहले पुलिस वालों ने भी इस तरह की बात कही। तो सवाल यह उठता है, तो फिर रचनात्मकता रह कैसे जाएगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको लेकर के बकायदे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक एडिटोरियल कमेंट लिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है और ये बहुत महत्वपूर्ण, आप यूं कह लीजिए कि एक टॉपिक इमर्ज होता चला जा रहा है, तो इस पर भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो इस पर भी जो एक वो एडिटोरियल कमेंट है फ्रेंड्स, मैं आपको सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, एक तूफान की चर्चा आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे जिसका नाम है निवार, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपसे केवल ये बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि ये जो तूफान है, आप देखिए कि किधर से होकर के किधर किधर जा रहा है, और उससे भी बड़ी बात है कि इस तूफान से बचाव के लिए क्या किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में है, आपके मेन एग्जामिनेशन का जो थर्ड जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें आपदा प्रबंधन है, है ना? आपदा प्रबंधन की क्या व्यवस्थाएं होती हैं, क्या टीमें भेजी जाती हैं, आपदा आने से पहले किस किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, आप देखिए कि कैसे तमिलनाडु में उठाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में छुट्टी कर दी गई है और बकायदे धारा 144 लगा दी गई है, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक सिविल सर्विस स्टूडेंट के रूप में आपको चाहिए कि आप उन्हें ध्यान से देखें, क्योंकि जब आपके दिमाग में ये सब बातें होंगी तो जो केस स्टडी आता है जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर में, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हल करने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ न्यूज की बातें, अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। मुख्य विषय के तहत मैंने कल दो टॉपिक आपको दिए थे, एक मध्य प्रदेश को लेकर के था जो खासकर गायों के कल्याण के लिए जो वहां उपकर लगाया गया है कि उसको लेकर के आप सोचिए कि आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स निकाल सकते हैं, और दूसरा था कि जो औद्योगिक घरानों को बैंक लाइसेंस देने की सिफारिश की गई है। मुझे नहीं मालूम फ्रेंड्स कि आप लोगों में से कितनों ने सच में इस पर मेहनत की है, लेकिन यदि आपने मेहनत नहीं की है तो आप मान करके चलिए कि आप एक अच्छे अवसर को खो रहे हैं, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें सबके सब आपको लिखने होते हैं, सबके सब अटेम्प्ट करने होते हैं। आप सोच करके देखिए कि अगर आपको लग रहा होगा कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी तरह से किताबों से कर लेंगे और जो जो आप पढ़ेंगे वो सबके सब वहां आ जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहां तक कि जिनकी आप तैयारी भी कर चुके होंगे ना, वहां उनके भी उत्तर आपको अपने ढंग से लिखने होंगे, और यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी चुनौती है। और यदि आप अपने अंदर यह क्षमता विकसित कर लेते हैं तो मान करके चलिए कि आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए बीच बीच में मैं आप सबको इस तरह के अभ्यास दिया करूंगा। आपने महसूस किया होगा कि कल जब मैं औद्योगिक घरानों को बैंक लाइसेंस के बारे में बातें कर रहा था तो मैंने बिल्कुल अलग तरीके से आपसे बातें की थी। बैंक क्या होते हैं, औद्योगिक घराने क्या हैं, बैंकों का क्या रोल है, कैसे बैंक बनाए जाते हैं, इन सब की चर्चा मैं कर रहा था और इन सब की चर्चा बकायदे जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर्स हैं उनमें की जा चुकी है। अब आपको केवल करना यह था कि उन लेक्चर्स को दिमाग में ला करके और उनको अब इसके ऊपर अप्लाई करना है कि अगर ऐसा हो जाता है, अभी तो सिफारिश की गई है, देखिए कि अब सरकार इसके बारे में क्या निर्णय लेती है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसकी क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या आशंकाएं होती हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर, क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। आप दोनों तरफ के पॉइंट्स लिखिए। आज बकायदे इकोनॉमिक टाइम्स ने इसी टॉपिक को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं और यदि संभव हुआ तो मैं उसका हिंदी अनुवाद भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों बहुत सिंपल सा इसका उत्तर होगा, बहुत सिंपल से आंसर होंगे कि अगर औद्योगिक घरानों के हाथ में सच में बैंक आ गए तो वो तो किसी भी उद्देश्य के लिए ऋण ले लेंगे, ऋण का भुगतान करते हैं नहीं करते हैं वो सब उनके हाथ में होगा। और उसमें भी एक और भी बड़ा खतरा ये दिखाई दे रहा है कि पता लगा कि ये जो बैंक सारे के सारे बैंक हैं ये कॉरपोरेट के हाथों में आ गए हैं, यानी कि बैंकों पर कॉरपोरेट का अधिकार हो गया है और ये जो कॉरपोरेट होते हैं ये बड़े शक्तिशाली होते हैं, इनके पास राजनीतिक शक्तियां भी अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं, ये किस राजनीति का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं तो वो भी ये करेंगे। और हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक है, पता लगा कि ये कहा जा रहा है कि साहब इनका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन के लिए जो औद्योगिक घराने हैं ये दबाव डाल रहे हैं, तो इस तरह के एप्रीहेंशंस आप अपनी तरफ से व्यक्त कर सकते हैं। और मैं जो आपको एप्रीहेंशंस बता रहा हूं ये जो हमारे गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक के रघुराम राजन और डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य अपने आर्टिकल्स में इन्होंने इस तरह के एप्रीहेंशंस दिए हैं, लेकिन ठीक है वो तो एक्सपर्ट है, वो अपनी तरफ से अपनी बातें कह रहे हैं, उनको कहना भी चाहिए, उनके लिए आसान चीज है। लेकिन क्या हम आप जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अपनी तरफ से सोच सकते हैं? तो दोस्तों मेरा अनुरोध केवल यही है कि प्लीज जब भी आपको इस तरह का अवसर मिले सोचने का तो आप उसे यूं ही जाया मत कीजिए कि चलो ठीक है यार बाद में देख लेंगे, प्लीज उसका इस्तेमाल कीजिए। मुख्य विषय के बारे में दोस्तों बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं डॉक्टर शशांक भूषण और अभिषेक रंजन रांची झारखंड से, आप का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।